نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير سبق نمبر 163 آیت نمبر 105 سے 135 سورة طه لیسن نمبر 163 آیت نمبر 105-135 سورۃ طہٰ اور آخری سبق ہے یہ پارے کا. آیات پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے. پوری سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلا تھا موسٹ آف دا ٹائم, لیکن سورت کا جو شروع تھا اگر آپ وہ یاد کر لیں کہ جس میں خشیت الہی کی بات تھی, اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلا پیغام ملا تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے اللہ کی خشیت اختیار کرنی ہے. اب اس کے بعد پارے کے آخری سبق میں ہم اس پہ بھرپور طریقے سے بات دیکھیں گے کہ جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس میں تبدیلی کیا آتی ہے. کچھ قیامت کے بارے میں اہل مکہ کی جو غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کیا جائے گا, اور قیامت کے دھماکے کا اثر کائنات پر کیا ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے. پھر قیامت کے دن لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیا رویے ہوں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے معاملے میں جلدی کرنا کیا ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے اس میں, انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی کوشش کریں گے بات کرنے کی کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. پھر اس سبق میں علم کو بڑھانے کی دعا بھی ہے. سورۃ طہٰ وہ سورت ہے جس میں دو دعائیں علم سے متعلق ہیں. ایک پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں رب اشرح لی صدری, اور ایک آج کے سبق میں آئے گی. یہ خوبی ہے اس سورت کی کہ اس میں علم کو بڑھانے کی باتیں آتی ہیں. اور پھر اس میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہے, لیکن ادھر اس کا تھیم کیا ہے؟ عزم, فنسیہ اور عزم, کہ ہم نیکیوں کے ارادے کر کے بھول کیوں جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. اور اسی طرح سے پھر اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ خدا فراموش زندگی, گھٹن والی زندگی کیسے بنتی ہے. آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو دنیاوی ترقی کی اعلیٰ چوٹیوں پہ پہنچ بھی چکے ہیں کیا وہ خود کو ڈپریشن فری کر چکے ہیں, اور کیا ہمارے ملکوں کی پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تعلیم کی کمی ہے اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ علم سے دور ہیں. اور اسی طرح سے اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ تقویٰ زندگی کے اندر کس طرح کی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے کہ انسان کو ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے وہ ناگوار گزرتی ہے, اور ان کو ایوائڈ کرتے کرتے وہ جنت کے راستوں پہ جانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس سبق کا حق ادا کر سکیں, اور خاص طور پہ آخری آیتوں کی روشنی میں ہم بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا تقابل کیسے کیا. چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس کے بعد واقعی انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ دنیا ایک شاپنگ مال ہے, اب ادھر سے ہم جنت کی چیزیں خریدتے ہیں یا پھر ہم دنیا کی شاپنگ میں مصروف ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 105 سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ویسألونک عن الجبال, اور اے نبی یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. کون پوچھتے ہیں؟ یہاں یسألونک میں کس کے سوال کی بات ہے؟ اہل مکہ کا سوال. قیامت کے دن پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ سوال پوچھتے ہیں. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں پوچھتے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا, ہماری نافرمانیوں کی کیا سزا میں ملے گی. وہ کائنات کے اوپر اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں. تو جبال لفظ جو ہے یہ جبل کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی سیدھے سے سوال کا جواب سکھا دیا کہ ان کو کہہ دیجئے, فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا. اللہ اکبر. ایک بلڈوزر پھرے گا ساری دنیا کے پہاڑوں پر, اور وہ ینصفہا نصفہ کی صورت میں آئیں گے. نون سین فا, بنیاد کو اکھیڑ دینا اور اکھیڑ کر ریزہ ریزہ کر دینا, ڈیمولش کرنا انگلش میں اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. جیسے بلڈوزر کسی چیز پہ پھرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں کیا تھا اور پیچھے کیا ہوا. یہی بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی کہ کس طرح قیامت کا دھماکہ ہر چیز کو ملیامیٹ کر دے گا. ہم نے سورۃ الکہف کے آغاز میں ایک آیت پڑھی تھی کہ یہ دنیا جس کے کھیل تماشوں میں کھوتے ہو یہ کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن میں چٹیل میدان بنا دے گا. اپنے اوپر لے کے سوچئے, پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہیں گے قیامت کے جھٹکوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے تو میرا کیا حال ہوگا. مزید تفصیل بتائی, فیزروح قاءن, اور چھوڑ دے گا اس زمین کو چٹیل صف صفن, بالکل ہموار میدان بنا کر. یہ جو لفظ ہے نا قاءن, قیتن سے, قیا ہموار میدان کو کہتے ہیں, پلینس انگلش میں آپ میدانوں کو کیا کہتے ہیں, پلین فیلڈس. درخت اور عمارتوں کے بغیر والی زمین, اس کا روٹ کیا ہوتا ہے, قاف یا یا, اور صف صفا یہ رباعی ہے, سواد فا سواد فا, صف 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 صف, اس کی ساؤنڈ کو فیل کر کے آپ دیکھیں, صفاف جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا صاف, وہ بھی یہی لفظ ہے کہ قیامت کے دن زمین کے اندر کوئی ٹیلا ٹبا نہیں ہوگا, کوئی اونچی نیچی چیز نہیں ہوگی. سہل بن سعد کی روایت سے ہمیں بات ملتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ سفید صاف سیدھی روٹی کی مانند زمین پر ہوں گے اور وہاں حشر ہوگا. کبھی سوتی ہے چپاتی, بیلنے سے جب روٹی کو بیلتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ہلکا سا گرین بھی ہوگا نا تو وہ بھی پس جائے گا. قیامت کا جھٹکا اس طرح لوگوں کو ہوش سے بے ہوش کر دے گا. پھر فرمایا کہ وہ سفید ہوگی جس پر کوئی قتل نہ ہوگا, یعنی خون نہیں بہا ہوگا اس زمین کے اوپر, اور پھیلی ہوئی ہوگی, اور ہر ایک کو وہاں صرف کھڑے ہونے کے لیے دو قدم رکھنے کی جگہ ملے گی. یعنی تیسرا قدم نہیں آپ رکھ سکتے. آپ امیجن کریں کسی جگہ فلی پیکڈ جہاز ٹرین بس, اور آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے, کسی کا پاؤں پہ پاؤں آ رہا ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی ادھر سے کسی کی سینے کی سمیل آ رہی ہے. مت سوچئے کہ قیامت کے دن ہم بڑے انجوائے کر رہے ہوں گے اور ایک ایئرپورٹ کے لاؤنج میں کھڑے آتے اور جاتوں کو دیکھیں گے اور نئے رواج اور فیشن بھی دیکھیں گے کہ اچھا پاکستان سے یہ کیا پہن پہن کے آ رہے ہیں, تو اب تو یہ فیشن آ گیا اور یہ ٹرینڈس چل رہے ہیں. قیامت کے دن لوگوں کی کیفیت اس سے زیادہ شدید ہوگی جو آج ہم امیجن کرتے ہیں. کوئی انجوائے کرنے والا منظر نہیں ہوگا, لوگ تھکے ہوں گے, لوگ بجھے ہوں گے, اور اتنی دنیا جب اکٹھی ہو جائے گی تو دو قدم سے زیادہ جگہ رکھنے کی جگہ کس کے پاس ہوگی. قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے کبھی نہ جانے دیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کسی پہاڑ کو ہٹانا کوئی چھوٹا کام ہے. یہاں آپ کو اتفاق نہیں ہوا ہوگا ایسا منظر دیکھنے کا, لیکن ناروے میں آپ دیکھیے کہ جن جگہوں پہ پہاڑ ہیں وہاں سے جب سڑکیں بنتی ہیں, اور خاص طور پہ وہاں ٹنلز بہت ساری ہیں نا بیچ میں راستے بنانے کے لیے, ایون سمندروں کے اندر بھی ٹنلز بناتے ہیں, تو آپ کبھی دیکھیں کہ پہاڑ اتنے بڑے ہٹا کے انہوں نے کیسے بنایا ہوا, یقین نہیں آتا کتنی محنت کی ہوگی. ایک ایسا وہاں راستہ ہے کہ پورا ایسے دیکھنے میں پہاڑ ہے, لیکن اس کے اندر آپ یوں جاتے جاتے ہیں اور آخر میں اوپر اس کی چوٹی پہ نکل آتے ہیں. اللہ نے عقل دی, لوگ بنا دیتے ہیں نا. کتنا وقت لگتا ہے, کتنی محنت لگتی ہے, لیکن قیامت کا جھٹکا ایک لمحے میں بڑے بڑے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, بس جب سور میں پھونکا جائے گا بس ایک ہی بار پھونکنا, اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہونا. اسی طرح سورۃ نمل میں آتا ہے کہ تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہیں بادلوں کی طرح چلنا. سورۃ قاریہ میں ہم پڑھیں گے, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور پہاڑ ہو جائیں گے اس دن جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوں گے. وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, آتا ہے قرآن پاک میں کہ میدانی زمین پر چمکتی ہوئی ریت کی طرح پہاڑ جو ہیں وہ چورا چورا ہو جائیں گے. سورۃ مزمل کی آیت 14 میں آتا ہے, وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا, پہاڑ اس دن بالکل راکھ بن جائیں گے. ایک جگہ آتا ہے, وَكَانَتْ هَوَامًا بَثًّا, بالکل بکھرے ہوئے جیسے یہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں نا جو صرف سن لائٹ میں سے دکھتے ہیں, روشنی کو دیکھیں جب, تو اس طرح پہاڑ ہوں گے. اب آپ ساری ان چیزوں کو امیجن کریں تو خوف آتا ہے. کتنا بڑا وہ جھٹکا ہوگا قیامت کا جس دن یہ سارے منظر ہو رہے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس دن کچھ نہ دیکھو گے اونچی نیچی چیزوں کو. کس طرح نہیں دیکھو گے, کیا نہیں ہوگا, آیت 107, لا ترى فيها عوجا, نہ تو آپ اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے, ولا امتا, اور نہ ٹیلا. عوج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو, اونچ نیچ, اور امتا ٹیلا, چھوٹی چھوٹی راکس ہوتی ہے نا, یعنی زمین کی ساری اونچ نیچ ختم ہو جائے گی. وجہ کیا ہے, وائے, تاکہ کوئی کسی چیز کے پیچھے چھپ نہ سکے اور حساب سے بچ جائے. दुनिया में हम अपनी छोटी सी अकल से ये सोचते हैं ना कि अच्छा मैं छुप जाऊंगी, पहाड़ के पीछे चली जाऊंगी, इतने लोगों में भला मेरा क्या पता चलेगा। ये बताइए कि आज के कंप्यूटर में आप कोई चीज डाल दें तो उसको पता चलता है? गूगल के सर्च में एक लफ्ज लिख दें तो सारे जमाने की सर्च करके ले आता है ना, 10-10, 20-20 सफ़े निकल आते हैं आपके सामने कि ये लफ्ज़ देखना है तो इसको देख लो। आज आप अपना नाम ही जाके डाल के देख लीजिएगा कि आपके नाम के साथ वहाँ क्या कुछ खुलता है। शायद जितने लोग आपके नाम के इंटरनेट पे किसी ना किसी तरह से कुछ कर रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स खुल जाएंगे, तो लकली क्या मुश्किल है। तो बात का खुलासा ये है कि इंसान उस दिन बच नहीं सकेगा, छुप नहीं सकेगा, और वो दिन उससे बहुत ज़्यादा शदीद होगा जो हम सोचते हैं। अब जब ये बातें पढ़ते तो कहते हैं हाय क्या करें, बड़ा खौफ आ रहा है, हाय बड़ी परेशानी हो रही है, हाय दिस एंड दैट, ऐसे नहीं, घबराना नहीं, तैयारी करनी है। और सूर की बात है ना, तो सूर का लफ्ज जो होता है ना, ये कर्ण है, नरसिंगा जैसे ये। अब ये मैं इसमें बोलूंगी तो आवाज आपको ऊंची जाएगी ना। इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिसको अल्लाह ने इस हुक्म पर मामूर किया हुआ है कि क़यामत बर्पा करें। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में भी ये बात है और तिर्मिजी में भी आती है कि इसराफील अलैहिस्सलाम ने करण का लुकमा बनाया हुआ है। लुकमा कैसे बनाते हैं, जैसे मिसाल है कि आप ये देखें, ये आपके हाथ में अगर खाना है तो आप इसको यूं बना के यहाँ रखे हुए हैं। फरमाया लुकमा बनाया हुआ है, यानी इसे मुंह लगाए हुए खड़े हैं, पेशानी झुकाई हुई या मोड़ी हुई है, और रब के हुक्म के इंतजार में है कि कब उसे हुक्म दिया जाए और वो इसमें फूंक दे। तो सूर फूंकना क्या है, फरिश्ते की फूंक जो करण के अंदर या सूर के अंदर बहेगी। और ये लफ्ज़ सूर पीछे मैंने वाजे किया था आपके लिए, सूरत ये जो होती है ना, हमारी सूरत भी इसी से, इसका लफ्ज़ ही मानी होता है माइल करना, टेम समवन, किसी चीज़ की तरफ इंक्लाइनेशन। सूरत भी लोगों को अट्रैक्ट करती है, शक्ल को देखकर लोग उसके करीब जाते हैं ना कि ये कौन है, कैसा शख्स है, कैसा होगा। तो सूर में एक कशिश होगी कि लोग कब्रों से उठ उठ की तरफ आ जाएंगे, और पहले नफ़े से सब पर मौत तारी हो जाएगी, और दूसरे नफ़े से अल्लाह के हुक्म से सब जिंदा होंगे, मैदान हशर में आ जाएंगे। और यही नफ़ा इधर मुराद है कि वो जब सूर में फूक पड़ेगी तो क्या होगा। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं, यौम इज़ी यत्तबिउन दाइश, जिस दिन पीछे चल पड़ेंगे सब लोग एक पुकारने वाले के, ला इवज लहू, मुमकिन नहीं कि जरा भी इससे पीछे हो जाए। तो यहां दाई कौन है, इसराफील है, सूर में फूकने वाले। ये यौम इज़ कौन सा दिन है, क्यामत का दिन है। और दूसरा सूर मुराद है इधर कि कोई उस वक्त नो नहीं कहेगा, यहां तो एक अजान नहीं, 4-4 अजानें होती रहती हैं फिर नहीं उठते, लेकिन क्यामत के दिन सूर की आवाज सुनकर हर एक लब्बैक कहता हुआ उठ पड़ेगा। हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के हुक्म को ओवरलुक करें, नजरअंदाज तो वो कर ही नहीं सकता। दूसरे सुर की आवाज के बाद सब भागने लगेंगे और उसके तरफ चलने लगेंगे, ऐसे लगता है कि जैसे तीर की तरह लोग चल रहे होंगे बिल्कुल सीधा। यौम इज़िल्ला तनफ़ौ शफ़ातु, उसे नई नफा देगी कोई सिफारिश, इल्ला मन अज़िना लहु रहमान, सिवाय उसके जिसके लिए इजाजत दे रहमान, व रदिया लहू कौला, और उसने पसंद की हो जिसकी बात। यानी क्यामत के धमाके और क्यामत की वहशतों की वजह से घबराए होंगे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकेंगे शिद्दत हौल और दहशत की वजह से। दुनिया में तो खसर बुसर लगी रहती है ना, कहीं भी चले जाएं, हॉस्पिटलों में भी लोग चले जाते हैं तो वहां भी बैठ के बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन वहां सब चुपके चुपके बातें कर रहे होंगे, कोई इशारों से कोई कुछ, लेकिन बोलेंगे नहीं। और उनका हाल क्या है, खशअतिल, ये जो खशअतिल अस्वात है ना, खशअत हासिल में लफ्ज ताम अनस की, दब जाना, खुशु का लफ्ज भी इसी से ही है। और अल अस्वात सौतुन की जमा, ले रहमान, रहमान के लिए, ला तस्मा, नहीं तुम सुनोगे, इल्ला हमसा, मगर एक बिन बनाहट। हम्स कहते हैं आहट को, आहट धीमी आवाज, जैसे कदमों की धीमी सी चाल होती है ना, बिल्ली जब चलती है तो पता भी नहीं चलता या रींगने की आवाज आती है, बिल्कुल आहिस्ता से है। हजरत इब्ने अब्बास इस आयत पे कहते हैं कि बगैर बात किए लब हिलाएंगे। अल्लाह अकबर, कहीं आपको मना हो ना कि बात नहीं करें तो फिर आप यूं करते हैं, इशारे से करते हैं ना लोग, वहां हाथ में कॉपी पेन तो नहीं होंगे कि लिख लिख के बातें करें। कुछ कनखियों से बातें करते हैं लोग, कुछ इशारों से, कोई आंखें भींच भींच के बात करते हैं। क़यामत के दिन कोई नहीं बोलेगा, सब खामोश होंगे, और किसी की सिफारिश करना तो दूर की बात है। यौम इज़िल ला तनफ़ौ शफ़ा, नफ़ा नहीं देगी, कर लो तुम जिसकी करना चाहो, फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि सिफारिश सिफारिश है, हुक्म नहीं है। हाँ मगर इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, सिर्फ उसकी जिसके लिए रहमान इजाज़त है। देखिए लफ्ज़ रहमान जहाँ बहुत ज़ुमानी है, ये उसका रहम है कि उसने उस दिन भी बात करने की इजाज़त दे दी, वरना कहाँ बोल सकते थे। दुनिया में तो चर्ब जुबानी थी ना, अल्लाह का हुक्म सुन के आगे से आंखें मटका कर बातें करते थे, आज तो बोल ही नहीं सकोगे। सूरत बनी इसराइल आयत 52 में भी हम पढ़ चुके हैं कि क़यामत के दिन लोग ऐसे होंगे जैसे चुप साध लेंगे, हम बात अगर करेंगे तो कौन सी, रदी लहू कौला, अल्लाह की पसंद की बात करेंगे। क्या दुनिया में वाकई अल्लाह की पसंद की लफ्ज़ बोलती हूँ? हर एक अपने आप से पूछे। हम जब बोलने पे आते हैं तो वो बेतुक्का ही बोलते हैं, सोचते भी नहीं कि हमारा एक एक लफ्ज़ लिखा भी जा रहा है और बोला भी जा रहा है, और कोई सिफारिश कर भी लेगा लेकिन फ़ायदा कोई नहीं देगी, क्योंकि ज़ात कौन सी है? आयत 110, यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ इनके सामने है और जो इनके पीछे है। वला यहीतून बिही इल्मा, और कोई अहाता ही नहीं कर सकते उसके इल्म का। बिल्कुल वही बात है जो सूरत बकरा 255 में आती है कि या लमु मा बैन अईदीहिम व मा खल्फहुम वला यहीतून बिशय मिन इल्मिह इल्ला बिमा शा। अल्लाहु अकबर। सूरत नबा में हम पढ़ते हैं, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा, कलाम नहीं कर सकेंगे मगर वो जिसको इजाज़त दे रहमान, और वो कहेगा भी तो बिल्कुल सीधी बात करेगा। तो करते रहो सिफारिशों की कोशिश, कबूल कोई नहीं होनी जब तक अल्लाह ना हुक्म दे। कम मिम मलक इन फिस समाइलन तुखनी शफातु मिल्ला मिम बादी इज़नी, उसकी इजाज़त के साथ ही सारे काम होंगे। तो अल्लाह कहता है या आलमू, मैं जानता हूँ। देखिए बंदों को तो नहीं मालूम ना कि अल्लाह ताला के दिल में क्या है, नहीं मालूम ना हमें कि अल्लाह ने क्या सोचा है, कल हमारे साथ क्या हो जाएगा, आज शाम को क्या होने वाला है, हमें तो अगली पल की खबर नहीं। लेकिन अल्लाह को पता है कि हमारे दिल में क्या है, तो क्या फिर हमें उससे डरना नहीं चाहिए? असल बात यह है कि हमें अगर इस बात का यकीन हो जाए ना कि अल्लाह को मेरे आगे पीछे की खबर है, मेरा माजी, मेरा हाल, मेरा मुस्तकबिल सब अल्लाह को पता है, तो हम सीधे हो जाएं, हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन सबसे मुश्किल यह है कि अपने रब के सामने हम सच्चे हो जाएं, उसे हम धोखा नहीं दे सकते। इससे मामला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो तन्हाई में भी देखता है, वो महफिलों में भी देखता है, वो हमें रात को भी देखता है, वो हमें दिन में भी देखता है, वो उस वक़्त भी हमें देखता है जब हम उसको याद नहीं करते, और उस वक्त भी देखता है जब हम उसको याद करते हैं। तो मेरे और आपके लिए इतनी सी बात में अमल की बात यह है कि असल बात यह है कि लोगों की नज़रों में सच्चे बनने से ज़्यादा अल्लाह की नज़रों में सच्चे बन जाए। हम लोगों को मोहब्बतों का एहसास दिलाते हैं, लोगों को अपनी सिंसियरिटी का एहसास दिलाते हैं, वी आर योर सिंसियर, आई एम योर वेल विशर। नीचे खतों के पहले दौर में क्या लोग लिखते थे, आपका खैर ख्वाह, चाहे अंदर से जड़ें काट रहे हो, बड़ी खुशी होगी आपके आने पे, कोई नहीं होती, आपके मुतमन्नी है शिरकत, कोई नहीं होते, बस गिफ्ट भेज दें उतना भी काफ़ी है। हम दिन रात लोगों को धोखे देते हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत है, कोई नहीं होती, ज़रूरत होती है। बस सारी बात यह है कि हमें हर वक्त ये बात याद आ जाए। अल्लाह ताला कहते हैं उस दिन जो होना है वो आज कर लो, और वो क्या है, वह अनतिल वजूहुल हय्यिल क़य्यूम, और सब के चेहरे झुके होंगे उस हस्ती के सामने जो हय्यिल क़य्यूम है। ये है कुरान पाक का वो तीसरा मुकाम जिसमें इसमें आज़म है। भूल चुके होंगे अब काफ़ी दिन गुजर गए इस बात को, लेकिन सूरत अल बकरा की आयतुल कुर्सी में और सूरत आल इमरान की आयत नंबर 2 में ये बात हुई थी कि कुरान पाक में 3 आयात ऐसी हैं जिनमें इसमें आज़म का ख्याल है। एक खुल के बात तो नहीं बताई गई, और जब तीनों को जमा करें तो जो लफ्ज़ दोनों में कॉमन है वो अल हय्य और अल क़य्यूम है। तो उलमाए कराम में से अक्सरियत का ख्याल क्या है कि अल हय्य और अल क़य्यूम ये इसमें आज़म है, और हदीस में आता है कि इसमें आज़म के ज़रिए से जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। अनत का लफ्ज़ अनत, आना से सब के झुके होंगे, आइन नून वाव, ये रूट की ता नहीं है, गलती ना खाइएगा, ये इनको ज़रूर दें टेस्ट में ताकि भूले ना। आइन नून वाव। अनवुन कहते हैं आजजी इख्तियार करने को। आनी कहते हैं अरबी जुबान में असीर को, कैदी, प्रिजनर। आप जरा इमेजिनेशन में लाइए जरा कोई प्रिजनर, कैदी। शर्मिंदगी, नदामत, आजजी, बेबसी, उदासी, आंखों में आंसू, रिग्रेट। ऐसी होंगी शक्लें क्यामत के दिन, आंखें खोल खोल के देखने वाले नहीं होंगे रब को। क्या कोई आंखों में अल्लाह को कुछ कह दे। अनतिल वजूह, चेहरे झुके होंगे। और वजह की बात है, वजूह सबके चेहरे, आज ये चेहरा ही तो नहीं झुकता ना हमारा अल्लाह के आगे। आज लोगों के आगे झुकते हैं, उस दिन लिल हय्यिल क़य्यूम के आगे झुकेंगे। वक़द ख़ाब मन हमला ज़ुल्मा, और यकीनन वो ख़ायब और ख़ासिर हुआ जिसने जुल्म का बोझ उठाया, किसी तरह का भी शिर्क किया। यहां देखिए जुल्म से मुराद शिर्क है। थोड़ा भी शिर्क किया ना अल्लाह के मामले में तो कद खाबा, तबाही, बर्बादी, बैंकरप्सी। खाबा खीबुन खीबतुन, नाकाम होने को कहते हैं। नाकाम हो गया, फेल हो गया, खराब हो गई उसकी जिंदगी। और बंदों के मामले में अगर जुल्म लेंगे तो दूसरों के हक में कमी करने वाला, बंदों के हक मारने वाला। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है जिसको मुत्तफिक अलह कहते हैं कि इय्याकुमुज़्ज़ुल्म, जुल्म से बचो, क्योंकि अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातु यौमिल क़ियामा, जुल्म क़ियामत के दिन अंधेरों का जरिया होगा। ये कैसे होता है? माली कमियां, लोगों से अगर आपका माली लेन देन है उसमें कमी, जिस्मानी कमी, हक ज्यादा ले लेते हैं नौकरों से, उनकी तनख्वाह से ज्यादा काम ले लेते हैं। अखलाकी कमी, जुल्म होता है, गाली दे दी, डांट दिया, बोल दिया, इन्होंने क्या बोलना है। अपने बराबर वालों के साथ जुल्म कैसे करते हैं, गीबतें करके, यतीम गरीबों का हक मार के। और दूसरी तरह जुल्म कैसे करते हैं, इस पर एक छोटी सी किसी ने मुझे कहानी भेजी, अच्छी लगी मुझे, कि एक देहाती था तो वो अपनी गाय या भैंस का जो दूध था उसको जमा करता, फिर उसको बलोता, फिर उसके अंदर से मक्खन निकालता, फिर उसके पेड़े से बना के तो वो जमा करके तो शहर जाता, तो एक दुकानदार था तो उसको वो मक्खन दे देता, तो वो मक्खन के बदले में इसको कुछ चीज़ें दे देता, दाल चावल जो भी शहर में मिलती हैं या कोई ऐसी चीज़ें, और ये आके इधर बेच लेता, वो मक्खन बेच लेता। और अक्सर लोगों का मैंने सुना है कि देहात होते हैं वहाँ लेन देन पैसे की बजाय चीज़ों के बदले में चीज़ें ही होती हैं। तो इसी तरह एक दिन उसने यही किया, मक्खन लिया और चला गया दुकान पर, गया उसने खुशी खुशी उसको चीजें दे दी। जब वो मक्खन बेच के गया तो ऐसे दुकानदार के दिल में आया कि मैंने कभी वजन तो किया नहीं, वो एक एक किलो के पेड़े बना के ले जाता था। उसने कहा लाओ जरा मैं थोड़ा इसका वजन तो करूं। जब उसने मक्खन का एक पेड़ा रखा तो वजन किया तो वो 900 ग्राम था। उसको शक हुआ, कहने का 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम है, दूसरा भी करके देखो। जब तोले तो सारे के सारे ही 900 ग्राम के थे। इसको बड़ा गुस्सा आ गया। खैर आदतन हर 15 दिन 20 दिन या जब भी वो आता था वो दोबारा खुशी खुशी फिर आ गया अपने साथ मक्खन लेकर। ये दुकानदार उसको देखकर चीखने लगा, जो भी कह सकता था कहा कि झूठे खयानतदार धोखेबाज, ये वो मेरे पास ना आना, मैंने तो पहली दफा तेरे मक्खन का वजन किया तो वो तो इतना। जब ये अपने गुस्से को भड़ास को निकाल चुका, दिल की बात कर चुका ना, तो वो जो गरीब किसान था या जो गवाला था उसकी आंखों में आंसू थे तो रोने लगा। तो कहने लगा कि तुम रो क्यों रहे हो? कहने लगा कि भाई हम गरीब लोग हैं, हमारे पास किधर है वजन के आले और कुछ, क्या तो कहा तुम तोलते कैसे हो? कहता जो तुमसे दाल का पैकेट ले जाता हूं ना उसको रखता हूं तराजू में तो उसके बराबर का मैं वजन मक्खन तोल देता हूं, जो तुम देते उतना दे देता हूं। तो मॉरल क्या है कि हम दूसरों को देखते हैं खुद को नहीं देखते। बहुत दफा ऐसा होता है, यकीन करें, इसको सिर्फ तकड़ी और तराजू पे ना रखें, अपनी जिंदगी के घर में ले, अपने घर में ले। हम सोचते हैं कि ज्यादती दूसरा कर रहा है, कसूर मेरा होता है। दूसरे की तरफ एक उंगली उठती है, अपनी तरफ चार उठती हैं। जिसको अपनी इसलाह समझ आ गई वो कभी जुल्म नहीं करेगा। घर जाके पूछे आज अपने मर्दों से, क्या वाकई मैंने आपके ऊपर जुल्म तो नहीं किया हुआ? क्या आपके जज्बात का गला तो नहीं मैंने घोटा हुआ अपनी चिड़चिड़ाहट से और आपको तड़पा तड़पा कर? हमेशा अपनी इसलाह, अपनी इसलाह। जिसने अपने ऊपर नजर रख ली उसको दुनिया में कोई दूसरा बुरा नहीं लगेगा। तो इय्याकुम वज़्ज़ुल्म, आपको तो अल्लाह के नबी ने खुद को एक बार पेश कर दिया कि अगर मैंने किसी पे कोई जुल्म किया हो तो आप मेरे से आज बदला ले लो, क्यामत के दिन ना आ जाना ये कहकर के मुझे बदला चाहिए। तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के नबी मैंने आपसे बदला लेना है। कहा क्यों? कहा वो बदर वाले दिन जब आप सफ़े सीधी करा रहे थे तो आप अपनी छड़ी के साथ यूं हमारी लाइन सीधी करा रहे थे। ज़रा मैं आपको कहूँ ना, अगर अपनी ज़रा सफ को देखें हम, तो फिर यूं छड़ी के साथ स्टिक के साथ आप यूं लोगों को सीधा करते थे। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि जब आप यूं कर रहे थे ना तो मैं थोड़ा सा आगे था तो आपकी जो छड़ी की नोक थी वो मेरे पेट को लगी थी तो मुझे तकलीफ हुई थी। कहा अच्छा, क्या चाहते हो? कहा कि आप अपना पेट खोले तो मैं भी आपको इसी तरह से चोट लगा लूं, नहीं तो मैं पूछूंगा। अब सहाबी परेशान है देखकर कि ये क्या कह रहा है, अगर अल्लाह के नबी ने ऐसा किया भी है तो कोई पर्पसली थोड़ी किया है। लेकिन वो देखिए जिनको आखिरत के मुहासबे का फिक्र होता है, आपने कहा इसको कुछ ना कहो, खड़े हो गए। कहा कि आओ, जैसे मैंने तुम्हें चोट लगाई थी ना तुम भी लगा लो। कहा नहीं, जब मुझे आपने छड़ी की चोट लगाई थी तो मेरे जिस्म पे कपड़ा नहीं था, आप भी कमीज उतारिए। और सहाबा को रंज हो रहा है कि ये कैसी गुस्ताखियां कर रहा है, लेकिन खुद को मुहासबे के लिए पेश करने वाला नबी बुरा नहीं मनाते। कहा ठीक है, कपड़ा उतारा। जो ही आपने कपड़ा उतारा, कहा हो बदला ले लो, तो उस सहाबी ने आकर आपके पेट का बोसा लिया। कहा अल्लाह के नबी मेरी कहां ये जुरत, मैं तो चाहता था कि मेरे होंठ आपके जिस्म को छू लें और ये जहन्नुम की आग से महफूज हो जाए। यानी आप सोचिए कि वो कैसे लोग थे। हम तो इंसानी मामलात की नजाकत को समझते ही नहीं है, इसलिए फिक्र करने की जरूरत है। यकीन करें जब इंसान ऐसी बातें पढ़ता है दिल करता है जंगलों में चले जाए, ना किसी का लेना और ना किसी का देना, करो अपने काम खुद, हम नहीं करेंगे। इस तरह के हालात होंगे क़यामत के दिन और हम हंस के नहीं दिखा सकते। अमानत में ख़यानत, उधार चीज ली वापस ना की बगैर इजाजत के ली, जरा देना एक फोन कर लूँ और चार फोन कर दिए और फिर भी अगला ले ले तो बड़ी बात है। हदीस में था किसी का माल कसम खाकर किसी ने ले लिया, झूठी कसम खाई कि नहीं मेरा है और वो चीज उसकी नहीं, तो उस पर जन्नत हराम है। और आपको था कि आपस की अमानते और मालदारियां जो है जन्नत में जाने से कैसे रोकेंगी? अल्लाह ताला उसकी इबादत की वजह से उसको जन्नत में भेज देगा, लेकिन वो चीज जो उसने दूसरे को देनी लेनी थी उसकी वजह से वो जन्नत में जा ही नहीं पा रहा होगा। तो आज भी अपनी जिंदगी के अंदर हम जरूर इस चीज की कोशिश करें कि हम अपने आप को देखें। इंसानों का मामला बड़ा संजीदा है, अल्लाह की जात तो बड़ी जल्दी मान जाती है, बंदे रूठते भी देर से हैं और मानते भी देर से हैं। अल्लाह की जात मानती भी जल्दी है और रूठती भी जल्दी है। तो लिहाजा कभी भी किसी के हक में अगर कोई कमी बेशी की हुई है तो आज ही उसके बारे में फिक्र कर लें हम सब, क्योंकि हम सब इंसान हैं। चलेंगे तो मिट्टी तो पड़ेगी, ये नहीं हो सकता कि चलें तो मिट्टी ना पड़े, ये कभी नहीं हो सकता। सूरत गाशिया है तो मैं वजूह हुई यौम इज़िन खाशिया, वो दिन जिस दिन कई चेहरे झुके होंगे, आमिलतुन नासिबा, वो काम किए हुए जिनकी मजदूरी कोई नहीं मिलनी। वो क्या होता है कि काम भी करते थे अच्छे, लेकिन कोई ना कोई बीच रस्ते की रुकावट ऐसी थी कि जिसने उनकी नेकियों को डिलीट कर दिया। तो दुआ कीजिए कि कल क़यामत के दिन कोई ऐसा जुल्म और ज्यादती हमारे खाते में ना पड़ जाए कि हम जिस जन्नत के उम्मीदवार थे उससे बाहर खड़े हों और जिसको हम बुरा समझते थे उसकी बुराइयां करने की वजह से उसके गुनाह तो माफ़ हो गए और हमारी जगह वो जन्नत में पहुंचा दिया गया हो। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे और इस जुल्म से बचने की ज़रूरत है। सास का बहू पे जुल्म है या बहू का सास पे है, शोहर का बीवी पे है या बीवी का शोहर पे है, हत्ता के बकरियों से सींग दिलवा कर अल्लाह ताला उनको बदले दिलवा रहा है तो मैं और आप कहाँ हैं। हदीस कुदसी कौन सी होती है जिसमें अल्फाज भी अल्लाह सुब्हान तआला के होते हैं, सिर्फ नबी सल्लम की ज़ुबान से अदा होते हैं। उसमें आता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, किसी जालिम के जुल्म को मैं अपने सामने से गुजरने नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। देखिए ना, कोई शख्स चुंगी पे खड़ा है या टोल पे खड़ा है तो किसी गाड़ी को बगैर टोल लिए जाने देगा? ज़्यादती हो जाएगी ना। तो अल्लाह कहते मैं तुम्हें नहीं वहां से गुजरने दूंगा, चाहे जो मर्जी कर लो। तो फिर लिहाजा आज माफिया मांग लें, आज ज्यादतियों से बच जाए, छोड़ें दुनिया को, जो हमारा लेता लेने दें। देखिए जालिम बनने से तो मजलूम बन के आना अच्छा है। हजरत अली फरमाया करते थे कि क्यामत के दिन मैं मजलूम बन के आऊं, ये मैं गवारा करता हूं, لیکن یہ گوارا نہیں کرتا کہ ظالم ہو. اور ہم چرب زبانی کی وجہ سے اپنے رشتوں کا بعض دفعہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بعض دفعہ اپنی ڈومیننسی کا، کیونکہ ہمارے آگے کوئی بول نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ قیامت کے دن تکلیف اٹھائیں گے.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما